بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب لحوم الخيل. عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑوں سے متعلق مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ گھوڑوں کا کھانا شرعاً کیسا ہے، ان کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، جائز ہے ناجائز. دو روایتیں ذکر فرمائیں، ایک روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں کو ذبح کیا تھا اور ہم نے اس کو کھایا تھا. اور دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کے کھانے کی آپ نے رخصت دی ہے. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے جو ہے نا وہ حلال جانوروں میں سے ہیں اور ان کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے، قربانی نہیں کی جائے گی لیکن کھانا جائز ہے. قربانی کا زمانہ قریب ہے تو اس لیے جو ہے قربانی کا اگر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں، نہیں ہرن کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی جو ہے نا صرف انہی جانوروں کی ہے، اور مرغی کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ ہیں جو یعنی بعض اصحاب ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ مرغی کی قربانی ہو سکتی ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، یہ صرف ان کی طرف سے بنائی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات ہے. یہ تو انشاءاللہ قربانی سے متعلق مسائل جو ہے نا وہ آئیں گے، آئندہ ہمارے ہفتے باقی ہے دو بھی، تو اس کے اندر تفصیلات آئیں گی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی گھوڑے حلال جانوروں میں سے، ان کا کھانا جائز ہے، حضور کے زمانے میں صحابہ نے کھایا بھی ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ گھوڑوں کا کھانا جو ہے نا وہ مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ گھوڑے ناپاک یا نجس جانور ہے یا گھوڑوں کے اندر درندگی پائی جاتی ہے یا دیگر اور اوصاف پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ گھوڑا آلہ جہاد میں سے ہے. آلہ جہاد یعنی جہاد میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر لوگ کھانا شروع کر دیں گے ان کی پیداوار کم ہو جائے گی، تو دین کے ایک اہم فریضے میں ہو سکتا ہے کہ کمی ہو جائے. پھر اس بنیاد پر، اس خارجی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھئی اس کا استعمال نہ کیا جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے اور ان کو کھایا جائے. اور یہ بڑے عظیم جانوروں میں سے ہے گھوڑے کا گھوڑا جو ہے نا، حدیثوں میں ہے نا کہ گھوڑے کی وجہ سے تین قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں. ایک روایت میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہی رکھ دی ہے، ان کو حسن نیت سے اگر پالا جائے تو بڑا بابرکت جانور ہے. بعض جانور وہ ہیں جن کے گھر میں رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ترغیب دی ہے، جن کا پالنے کی ترغیب دی ہے، جیسے مرغ ہے یا بکری ہے. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ برکت ہوتی ہے اس کو گھر میں رکھا جائے، حضور نے خود یہ بات ارشاد فرمائی. مرغ کے بارے میں فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دیا کرو کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو پھر ندا لیتا ہے یا پھر فجر کی اذان کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیتا ہے. اسی طرح گھوڑا بھی ہے کہ آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اگر اس کو پالتا ہے تو جب تک جو ہے یہ آدمی کے پاس رہے گا، پلتا رہے گا، کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا. حتیٰ کہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ گندگی بھی کر رہا ہے تو اس کا بھی ثواب نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو بڑے عظیم بابرکت جانوروں میں سے ایک یہ بھی ہے. اور اسی بنیاد پر جو ہے نا ایک بات یہ نکلتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عام طور پر ہم سواری خریدتے ہیں تو خریدنے میں دنیاوی سہولتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں. بھائی بیٹھنے کی سہولت کس میں زیادہ ہے، اے سی کی سہولت کس میں زیادہ ہے، سن پروف ہے یا نہیں ہے، یہ پروف ہے یا نہیں ہے، بلڈ پروف ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اور کتنے پروف جو ہے نا اس کے ساتھ ہم لگا لیتے ہیں. फिर जाने में सहूलत हो, आने में सहूलत हो, सीटों में जो है ना बड़ा सीटें बड़ी आरामदा हो, लंबे सफ़र जो है ना हमारे लिए आसान हो, ये होते हैं। लेकिन ये गाड़ी हम ख़रीद रहे हैं ताकि अल्लाह के रास्ते में काम आए, ताकि इसको मस्जिद तक हम इसमें बैठकर जो है ना जा सकें, ताकि इसके ज़रिए मदरसे तक जा सकें, दीनी कामों में इसको हम लगा सकें। इस नीयत से अगर आदमी ख़रीदता है तो फिर वही सवारी होगी, वही गाड़ी होगी, वही चलना होगा उसका, वही फिरना होगा, लेकिन वो इबादत बन जाएगा आदमी का। आम बग़ैर नीयत के आदमी ख़रीदता है तो एक ज़रूरत है और उसकी तकमील है उसके ज़रिए, लेकिन नीयत सही करके अगर ख़रीदता है तो वो ज़रूरत आदमी की इबादत बन जाती है फिर। तो इसलिए सवारियों किसी भी चीज़ को आप ख़रीदें, नीयत अगर सही है उसमें तो वो चीज़ आपके लिए इबादत बन जाएगी। आपके कपड़े आप ख़रीदें, नीयत दुरुस्त कर लें उसके ज़रिए कि शरीयत का हुक्म है सतर छुपाना, मैं इस ये पहनूंगा नमाज अदा करूंगा इसके ज़रिए, ये पहनूंगा इसके ज़रिए जो है ना अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा मैं, जो जो नीयत हो सकती है आदमी की वो आदमी नीयत कर ले, उसके बाद जितनी नीयतें होंगी सवाब भी मिलता रहेगा उतना ज़्यादा। फिर तो हमारे अपनी नीयतों की दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत असमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में हमने घोड़े खाए हैं, और दूसरी रिवायत में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम खैबर अन लहूमिल हुमर, अल्लाह के नबी ने घोड़ों के गोश्त के खाने की तो रुख्सत दे दी है लेकिन गधों का गोश्त खाने से हुजूर ने मना फरमाया, गधे हलाल नहीं है हमारे लिए। मजबूरी में गधे जायज़ हो गए थे, आगे उनकी बात आ रही है, लेकिन आम हालात में उसकी गुंजाइश नहीं है। अगला बाब वही है। दूसरा बाब है बाब लहूमिल हुमुरिल इंसिया, पालतू घरेलू जो इंसी जो गधे होते हैं उनके गोश्त का यह बाब है। इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 9 रिवायतें जिक्र फरमाई हैं। उनमें पहली रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, फरमाते हैं कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलियत यौम खैबर, अल्लाह के नबी ने खैबर के दिन पालतू गधों के गोश्त के खाने से मना फरमाया। उस वक्त यानी उससे पहले उसकी गुंजाइश थी, उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। फिर आगे रिवायतों में भी यही मज़मून है। उसके बाद अगली रिवायत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उसमें ये मज़मून है, फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुतअति आम खैबर वान लुहूमिल हुमुरिल इंसिया, अल्लाह के नबी ने खैबर के दिन मुताह से मना फरमाया है और पालतू गधों के खाने से मना फरमाया है। इस बाब में ये दो मसले हैं जो ख़ास तौर पर जहन में रखने के हैं। एक तो है गधों के गोश्त का खाना। गधे दो किस्म के होते हैं, एक वैसी होते हैं जो जंगलों में फिर रहे होते हैं, और एक है जो हमारे पास घरों में होते हैं, यानी घरों आदमी यानी बारबर्दारी का, जिससे आदमी काम लेता है सवारी के, बारबर्दारी यानी सवारी उठाने का, सामान लाने लेके जाने का, जिसके ऊपर बोझ रख दिया जाता है, जानवर जो है ना उठा कर ले जाता है। तो ये जो पालतू गधे हैं ये खाना जायज़ नहीं है, ये हराम है। किसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अरब में जो है ना इसके खाने का रिवाज भी था, बाज़ चीज़ों को वो खाते थे बाज़ चीज़ों को नहीं खाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि नहीं। बाद रिवायतों में जो जिक्र मिलता है कि खाए हैं सहाबा ने, तो वो पहले वाली बात है इब्तदा में, तो या फिर बाज़ ख़ास मजबूरियों के तहत में है, सहाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्या किया जाए, तो हुज़ूर ने फरमाया सिवाय गधों के, तो फरमाया कि जो मोटे मोटे गधे हैं वो खा लिया करो। तो ये गुंजाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, तो मजबूरी की सूरत अलग है, लेकिन आम हालात में उसके खाने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा मसला जो इस हदीस में है वो है निकाह मुता का। अच्छा, एक गधे वो होता है जो जंगलों में होता है, जिसको वहशी गधा कहते हैं, जिसको हम नील गाय भी कहते हैं, तो उसका खाना जायज़ है, वो हलाल है। वो वजह क्या है कि गधों के खाने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, तो एक रीज़न तो उलमा ने उसका यही बयान किया है कि गधा जो है वो गंदगी खाता है, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और एक रीज़न इसका उलमा ने जो असल जो जिक्र फरमाया वो ये है कि ये असल में है ही नजीस जानवर, इसकी नजासत अगरचे कि खिंजीर जैसी नहीं है, कुत्ते जैसी नहीं है, लेकिन फी नफ्सी ही नजीस है। तो इस बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अब चाहे रीज़न जो भी हो, जब ममानात है तो बस उस पर अमल करना है हमारे लिए, हिकमत और वजह क्या है उसकी कोई हैसियत नहीं। दूसरी चीज़ जो या दूसरा मसला जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है वो निकाह मुता के बारे में है। निकाह जो है ना बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक निकाह निकाह मुता भी होता है, निकाह मुता या निकाह मुअक्कत, यानी वक्ती तौर पर आदमी निकाह कर ले। और ये उसमें होता यह आदमी ये कहता है औरत से, किसी खातून से, कि भाई मैं तुमसे इतने पैसों के इवज़ में इतने महीने के लिए निकाह कर रहा हूँ, मैं तुमसे इतने पैसों के इवज़ में इतने दिन के लिए निकाह कर रहा हूँ। तो उसमें वक्त भी मुतय्यन कर देता है, पैसे भी मुतय्यन कर देता है, और तमत्तौ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। निकाह के बजाय ये कहता है कि अतमत्ताउ, मैं तुमसे फ़ायदा उठाऊंगा। यह है निकाह मुता, जायज़ है या नाजायज़। तो आप इस हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह से जो है ना मना फरमाया है कि इस तरह निकाह करना जायज़ नहीं है। शिया के यहाँ जायज़ है यह निकाह, वो हजरात उन हजरात के यहाँ जो है ना अगर कोई इस तरह वक्ती तौर पर किसी से निकाह करना चाहे, रखना चाहे तो रख सकता है। अब जाहिर सी बात है कि ये अगर मौजूदा ज़माने में इसकी शक्ल देखी जाए तो सिवाय जिनाकारी के और कोई सूरत नहीं बनती इसकी। इसी के करीब करीब एक निकाह होता है निकाह मुवक्कत, उसमें भी यही होता है कि उसमें भी आदमी चंद पैसों के एवज में महदूद मुद्दत के लिए, महदूद वक्त के लिए जो है निकाह करता है किसी खातून के साथ कि भाई मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ इतने पैसों के एवज में इतने दिनों के लिए। निकाह मुता में मुतय का लफ्ज़ होता है, निकाह मुवक्कत के अंदर निकाह का लफ्ज़ होता है, बस लफ्ज़ का फ़र्क है। होता दोनों में यही है कि भाई महदूद मुद्दत के लिए आदमी निकाह करता है। अब उनके पास दलाइल अपने मौजूद हैं, ऐसा नहीं है निकाह मुता जायज़ है यानी ये इसकी गुंजाइश है, तो कुरान पाक की दलील है उनके पास। तो कुरान पाक की दलील भी है और अहादीस मुबारक भी हैं, आसार सहाबा भी हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ना, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, जिन औरतों से तुमने फ़ायदा उठा लिया है तो तुम उनको उनका मेहर दे दो। तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने तमत्तो का जिक्र फरमाया, मादा वही है वो, लिहाजा निकाह मुता जायज़ हो गया, महदूद वक्त के लिए निकाह किया जा सकता है। ये है कुरान पाक की आयत। इसी तरीके पर बाज़ रिवायात हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंजाइश दी थी तो उससे वो इस्तदलाल करते हैं। तो जहन में रहना चाहिए कि एक ज़माने में ये भी मजबूरियों के तहत में अल्लाह के नबी ने जायज़ करार दिया था। जंगों में हैं सहाबा इकराम, कई महीनों से जो है ना बीवियों से दूर हैं, अलहदा हैं, ज़रूरतों के तक ज़रूरत हो गई उनको, तकाजे बढ़ गए, तभी तकाजे बशरी तकाजे जो है ना गालिब आने लगे, हुजूर से इजाज़त चाहिए। सहाबा ने बाज़ाब्ता इजाज़त चाहिए थी कि या रसूल अल्लाह या तो हम उस मौके पर नामर्द हो जाएंगे या फिर कोई दूसरी शक्ल बताइए। तो हुजूर ने उस वक्त फरमाया था कि भाई निकाह मुता कर लिया जाए चंद दिनों तक के लिए। तो ये कुछ मजबूरियाँ होती हैं, रुख्सतें होती हैं, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उसकी गुंजाइश दी थी, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी हुरमत बयान फरमा दी। एक तो खैबर के मौके पर सन 6 हिजरी में या सन 5 या 6 हिजरी में यह वाक़या पेश आया था, उस वक्त अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया था। फिर उसके बाद एक और मौका आया जहाँ ज़रूरत पड़ गई तो हुजूर ने उस वक्त भी उसकी गुंजाइश बतलाई, लेकिन फ़तेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ फरमा दिया कि भाई अब क़ियामत तक के लिए यह किसी के लिए हलाल नहीं है। जैसे हरम के बारे में फरमाया था ना कि भाई क़िताल मेरे लिए यहाँ पर जायज़ है आज के दिन, फ़तेह मक्का के जब मक्का फ़तह हुआ था तो हुजूर ने फरमाया था उस मौके पर कि यहाँ सिर्फ मेरे लिए क़िताल जायज़ है आज के दिन, और वो भी अल्लाह ने थोड़े से वक्त के लिए मेरे लिए हलाल किया है। उसके बाद फरमाया कि आज के बाद किसी के लिए यहाँ पर कत्ल व क़िताल जो है ना वो जायज़ नहीं है। तो खसूसी गुंजाइशें हालात के एतबार से, ज़रूरत और मजबूरियों की वजह से जो है ना मिल जाती हैं, इस तरह की शरीयत में इसकी गुंजाइश निकल दी है। तो इसी तरह निकाह मुता की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूरी में हालात के तहत में गुंजाइश दी थी, लेकिन फ़तेह मक्का के मौके पर आखिर में ये इरशाद फरमा दिया कि आज के बाद किसी के लिए हलाल नहीं है। तो इसलिए आज अगर कोई ये हरकत कर रहा है तो फिर सिवाय जिनाकारी के और कुछ उसको दूसरा नाम नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसी बाब में एक रिवायत है इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाहि अलैह से, जिसमें यह है कि नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अकली कुल्ली ذی ناب من السباع, दरिंदों में से जो कुछली दांत वाले जानवर होते हैं अल्लाह के नबी ने उनके खाने से मना फरमाया है। तो ये जो रिवायत है इसी से मुतालिक अगला बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह नकल कर रहे हैं, अगला बाब बयान कर रहे हैं कि बाब अकली कुल्ली ذی ناب من السباع, दरिंदों में से कुछली रखने वाले जो जानवर होते हैं, दांत रखने वाले जो जानवर होते हैं उनका खाना कैसा है। नाब असल में इन दांतों को कहते हैं साइड में जो थोड़ा सा निकले हुए होते हैं ना, या जिन जानवरों के जो जानवर चीर फाड़ करने वाले होते हैं, हमला करने वाले होते हैं, तो उनकी ये दांत, सामने के 4 दांतों को छोड़ दें आप, उसके बाद राइट साइड पे एक दांत और लेफ्ट साइड पे एक दांत, उसको कहते हैं कुचली, यानी कुचली वाला दांत, और अरबी में उसके लिए नाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जानवरों का खाना शरान जायज़ है या ना जायज़, खुलासा यह है कि जो दरिंदे होते हैं चीर फाड़ करने वाले होते हैं, जैसे शेर है, बबर है, और इस तरह से हमला करने वाले जो जानवर हैं उनका खाना जायज़ है या ना जायज़। तो इस हदीस में इमाम बुखारी ने वही मसला जिक्र फरमाया और वो हदीस पाक जिक्र फरमाई है कि ये जानवर खाना शरण हराम है। तो बुनियादी तौर पर जहन में रख सवाल ये है कि भाई कौन से हलाल हैं जानवर, कौन से हराम हैं। इब्तिदा में ये बात आई थी और ये मसला बताया गया था कि भाई जानवरों के हराम होने की वजूहत क्या क्या होती हैं, जैसे कभी जानवर को नजासत की वजह से शरण हराम करार दे दिया गया, कभी जानवर के जो है ना गंदगी खाने की वजह से जो है ना उसको हराम करार दिया गया, कभी दरिंदगी की वजह से, कभी जो है ना ज़र्र रसा होने की, नुकसान पहुंचाने की सिफत उसके अंदर होती है इस वजह से, कभी जो है ना खबासत उसके अंदर पाई जाती है इस वजह से, या आदमी को तबीयी तकद्दुर होता है, तबीयत सलीमा जो है ना उससे घिन करने लगती है। ये असबाब हैं जिनकी वजह से शरीयत में जानवरों को हराम करार दिया गया है। उसकी वजह दो ही हो सकती हैं, या तो जिस्मानी एतबार से आदमी के लिए नुकसानदेह है, या जो है ना रूहानी एतबार से आदमी के अखलाक को उन जानवरों का गोश्त मुतासिर करने वाला होता है, फिर आदमी के अखलाक बिगड़ने लगते हैं, तो ऐसे जानवरों को शरण हराम करार दिया गया। इस बारे में एक और उसूल भी जहन में रखें। बुनियादी तौर पर जानवरों की दो किस्में हैं। असल में चूंकि कई दिन से खाली जानवरों की बात हम कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल ये हमारा सिलसिला चल रहा है, तो इस वजह से मैं हर हदीस का तर्जमा भी नहीं कर रहा हूँ, बस एक दो हदीसें उस बाब की नकल कर देता हूँ, फिर उसमें से जो अहम अहम मसले होते हैं वो जिक्र कर रहा हूँ ताकि उकता ना जाए भाई, बार बार यही हदीस आ रही, यही हदीस आ रही, यही हदीस आ रही। तो एक उसूल बुनियादी तौर पर जहन में रख लें, वो ये है कि एक एक जानवर वो हैं जो समंदरी जानवर हैं, और कुछ जानवर वो हैं जो खुश्की के रहने वाले जानवर हैं। समंदरी जानवरों में से फ़िक़्हे हनफी में सिर्फ मछली हलाल है, बकिया हराम है। ये बात ये मसला आया है गुज़िश्ता, पानी वाले जानवरों में से सिर्फ मछली हलाल है, मछली के अलावा कोई जानवर हमारे पास हलाल नहीं है, दीगर इमामों के यहाँ उसकी गुंजाइश है, हमारे यहाँ नहीं है। और जो खुश्की के जानवर हैं उनमें बुनियादी तौर पर तीन किस्म के हैं जानवर, यानी समंद पानी के अलावा जो जानवर पाए जाते हैं उनमें तीन किस्में हैं। एक तो वो हैं जिनमें बिल्कुल खून नहीं होता, जैसे बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पतंगे होते हैं, मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, फलां फलां, जो यानी मच्छर हमारा खून ना पिए तो खून नहीं होता उसमें, आरामदेह जो भी खून उसके अंदर है वो हमारा खून है, अगर बगैर खून पिया हुआ मच्छर अगर आप मार देंगे तो खून नहीं निकलेगा उसमें से। बहरहाल इस तरह के जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इनमें खून नहीं होता, तो नंबर एक ये जानवर हैं जिनमें बिल्कुल खून नहीं है, तो ये भी हराम है। दूसरा जानवर वो है जिनमें खून होता है लेकिन बहने वाला खून नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पर छिपकली होती है, खून तो है लेकिन बहने वाला खून नहीं है इसके अंदर, या इसी तरीके पर सांप है, खून इसमें खून होता है लेकिन बहने वाला नहीं होता। तो इसी ये इस कबीले से इस हवाले से जितने भी जानवर हैं कि जिसमें खून तो है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, बहता नहीं है बहुत तेज़ी के साथ, इस तरह हमको अगर यानी बड़े जानवर को ज़बह कर दें तो बहने लगता है, तो ये जो जानवर हैं तो इनमें भी ये जानवर भी वो हैं कि जिनका खाना शरान जायज़ नहीं है, जिनमें खून नहीं है वो भी हमारे लिए हराम है, और जिनमें खून तो है लेकिन बहने वाला नहीं है वो भी हराम है। इनमें से सिवाय टिड्डी है जिसकी शरीयत में गुंजाइश है, बाकी कोई और जानवर हलाल नहीं है। अब तीसरी किस्म निकलती है उन जानवरों की जिनमें बहने वाला खून मौजूद होता है, यानी ज़बह करेंगे अगर आप तो बहुत खून बहेगा उनमें से, तो इसकी जो है ना फिर किस्में इसकी किस्में निकलती हैं, तो ये किस्में इसमें निकलती हैं। अब इसमें फिर दो किस्म इसमें तीन किस्म के जानवर हैं। एक तो वो जानवर है कि जो हमला करने वाले हैं, दांतों से हमला करके नोच के खाने वाले होते हैं, जैसे शेर है, बबर है, चीता है, लायन है, फुला टाइगर है, फुला फुला, ये जो जानवर हैं हमला करते हैं, हमला करके दरिंदगी के साथ चीर फाड़ करके खाने वाले होते हैं, ये भी हराम है। दूसरे दूसरे वो होते हैं जो इस तरह दरिंदगी के साथ खाने वाले नहीं है लेकिन पंजों से शिकार करके खाते हैं, जैसे शाहीन है, बाज है, शिकरा है, फुला है, जो बड़े बड़े चील जैसे जो जानवर होते हैं ना, तो पंजे से हमला करते हैं, चोंच के ज़रिए फिर खाते हैं, तो ये भी हराम है। और तीसरी किस्म इनमें वो है कि जो इनके अलावा है, बहने वाला खून तो है लेकिन वो ना वो हमला करते हैं, हमला करके अपने दांतों के ज़रिए नोच कर खाते हैं, ना जो है ना पंजों से शिकार करके खाते हैं, ये जो आते हैं दवाबुल अर्ज़ ये उनमें से आते हैं, जैसे बैल है, बकरी है, और परिंदे हैं छोटे छोटे उड़ने वाले जो होते हैं, फाख्ता होती है, इसी फाख्ता होता है, तोता होता है, वगैरह वगैरह, तो ये न दांतों से हमला करके खाने वाले होते हैं, न पंजों से, पंजों से पकड़ते हैं हमला नहीं करते, तोता जो है ना समझे से पकड़ता तो है लेकिन हमला नहीं करता। तो ये उसूल है इनमें से कि तीसरा उसूल ये इसमें तीसरा जाब्ता ये है कि जिन जानवरों में खून होता है बहने वाला, तो अगर वो हमला करके दांतों से खा रहे होते हैं तो वो भी जायज़ नहीं है, पंजे से शिकार करके खा रहे हैं तो वो भी जायज़ नहीं है, जो इनके अलावा हैं वो हलाल है। तो बुनियादी तौर पर ये जानवरों के सिलसिले में बात जहन में रखने की है कि कौन से जानवर हमारे लिए हलाल हैं, कौन से जानवर हमारे लिए हराम हैं। तो उनमें से यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात जिक्र फरमाई, हज़रत अबू सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नहा अन अकली कुल्ली दीना भी मिनस्सिबा, जो दरिंदे होते हैं तो उनमें से कुचलीदार जो जानवर होते हैं, अनियाब दांत रखने वाले जो जानवर होते हैं, वो हमारे लिए हलाल नहीं है, अल्लाह के नबी ने उससे मना फरमाया। उसके बाद बाब है बाब उजलूदिल मईता, मुर्दार की खालों के बयान में ये बाब है। मुर्दार की खाल यानी जानवर जब मर जाए तो उसकी खाल का खाना हमारे लिए, उसकी खाल का इस्तेमाल करना, खाना नहीं, उसकी खाल का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ है या ना जायज़, तो ये जहन में रहना चाहिए कि जानवरों की जो खाल होती है, चाहे उनको शरी तरीके पर ज़बह किया, यानी अगर शरान जानवर को ज़बह कर दिया गया। तो वो ज़बह किया हुआ जानवर जो होता है उसकी खाल जो है ना वो पाक हो जाती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो जानवर हलाल हो या हराम। जैसे बकरी है मिसाल के तौर पे, ये तो खाई इसको खाया जाता है, गाय है इसको भी खाया जाता है, इसको आपने ज़बह कर दिया तो बकरी भी हलाल है हमारे लिए और उसका उसकी खाल भी हमारे लिए हलाल है, चाहे तो खाल खाएं चाहे तो खाल आप इस्तेमाल करें। एक सूरत यह है कि जानवर तो हराम है लेकिन आपने उसको ज़बह कर दिया, मिसाल के तौर पर जैसे कुत्ता है, या इसी तरीके पर शेर है या चीता है, इसको आपने ज़बह कर दिया, लोमड़ी जितने भी इस किस्म के जो जानवर हैं इसको आपने, ये तो हमारे लिए गोश्त का खाना तो हराम है, हमारे लिए गोश्त नहीं खाया जाएगा, लेकिन आप जब इनको ज़बह करेंगे तो ज़बह करने की बुनियाद पर इनकी जो खाल है वो पाकीज़ा तो हो जाएगी, हलाल नहीं होगी, यानी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें पानी भर के आप पिए इसकी गुंजाइश है, उसको बिछाकर मुसल्ला बनाकर नमाज़ पढ़ें उसके लिए गुंजाइश है। तो हलाल जानवर हो या हराम जानवर हो, शरीय तरीके पर अगर ज़बह कर दिया जाता है तो उनकी खाल हमारे लिए पाकीज़ा हो जाती है, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि जो जानवर हैं हराम हैं, चाहे उनको शरी तरीके पर ज़बह नहीं किया गया इसलिए हराम है, या फी नफ्सी ही हराम है, मिसाल के तौर पर शेर है, बबर है, फलां है मर गए, तो उनकी खाल इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदे में ला सकते हैं या नहीं, नहीं ला सकते, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये है मसला। तो जहन में रहना चाहिए कि उनकी खाल दिबागत के बाद शरान पाक हो जाती है। यहाँ पर मैं हलाल होने की बात नहीं, खाने से मुतालिक मसला नहीं जिक्र कर रहा हूँ, इस्तेमाल से मुतालिक मसला जिक्र कर रहा हूँ। तो जो जानवर हराम है ना और उनको शरी तरीके पर ज़बह भी नहीं किया गया, ये जो हलाल जानवर हैं उनको शरी तरीके पर ज़बह नहीं किया गया, वो मुर्दार हैं हमारे लिए, हम नहीं खा सकते, लेकिन दिबागत जब उनको दे दी जाए तो फिर वो पाक हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल करना शरान जो है ना वो जायज़ है। दिबागत का मतलब क्या है? दिबागत का मतलब ये है कि उस खाल को लिया जाए, उसकी गंदगी वगैरह दूर कर दी जाए और खाल को महफूज कर लिया जाए, दिबागत का मतलब ये है। अब उसकी शक्लें कई कई होती हैं कि भाई कभी नमक के ज़रिए, कभी केमिकल के ज़रिए, कभी चूने के ज़रिए, कभी धूप में सुखा कर, कभी किसी और चीज़ के ज़रिए, चाहे सब अब जो भी अख्तियार करें, लेकिन जानवर से उसकी गंदगी वगैरह दूर कर ली गई और बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल बना लिया गया, तो अब वो आपके लिए पाक हो जाएगा। अब आप उस पर उसको बिछा कर नमाज़ पढ़ लें, या उसमें पानी भर कर जो है ना पानी पी लें, या आप अपने लिए बैग बना लें, या आप उसके लिए सोफ़े बना लें जानवरों के, उसकी गुंजाइश। अलबत्त दो खाल हैं जिनका इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नहीं है फिक्ह हनफी में। एक है मुर्दार की खाल, ये एक है इंसान की खाल, यानी अगर कोई मर गया अब उसकी खाल निकाल के अगर कोई इस्तेमाल में लाना चाहे तो उसे गुंजाइश नहीं है। दूसरे खिंजीर की खाल है, तो खिंजीर की खाल भी चाहे दिबागत दे दी जाए चाहे कुछ भी कर लिया जाए, तो इन दोनों का इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है हमारे लिए। बहुत से खिंजीर की खाल से जूते बने हुए हैं या सोफ़े बने हुए, तो मसले मसाइल आते हैं कि भाई सोफ़े बनाए जाते हैं उसकी खाल से, सोफ़ों के कवर वगैरह होते हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर उस पर जो है ना पानी गिर गया तो नापाक हो जाएगा, वो कच्चे हो जाएंगे हम, तो इसलिए उसका खिंजीर के बुरश वगैरह भी होते हैं, उसके उसके बालों के बुरश बनाए जाते हैं। तो बहरहाल खिंजीर नजिसुल आइन जानवर है जो कभी पाक नहीं होता हो, तो इसलिए उसका इस्तेमाल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। तो दो खाल हमारे लिए जायज़ नहीं है, एक इंसान है, इंसान की इस वजह से कि इंसान काबिल एहतराम है, उसकी अगर चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल करने में जो है ना इंसान की तौहीन है, वो इंसानियत के एहतराम के ख़िलाफ़ है, वो तो इसलिए उससे मना किया गया कि इसकी गुंजाइश नहीं है। और खिंजीर नजीसुल आयन है, वो कभी पाक नहीं होता, इस वजह से उसकी नदासत की वजह से शरान जो है ना उसे इस्तेमाल को मना किया गया, तो हमारे पास उसकी ख्याल कभी भी हलाल नहीं होती। इन दोनों के अलावा बकिया जौन सा भी जानवर मौजूद हो, अगर उसको उसकी खाल को पाक कर लिया गया, साफ़ कर लिया गया, तो फिर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह यही मसला जिक्र फरमा रहे हैं, देखें अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, फरमाते हैं कि अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र बिशातिन मैता, अल्लाह के नबी एक मरतबा एक मुर्दार बकरी के पास से गुजरे, फरमाया कि हल्ला इस्तमताअतुम बिहाबिहा, सहाबा ने देखा कि मुर्दार है तो उससे दूर दूर हो रहे हैं, फरमाया कि इसकी खाल को तुम क्यों इस्तेमाल में नहीं लाते, वो तो मुर्दार ही थी और हराम थी, तो हुजूर ने फरमाया कि इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाते, तो सहाबा ने कहा कि इन्ना हमीता या रसूलल्लाह, यह तो मुर्दार है कैसे इसको इस्तेमाल करें, तो आपने फरमाया कि इन्नमा हुर्रिमा अकलुहा, इसका खाना तुम्हारे लिए हराम करार दिया गया लेकिन इसकी खाल इस्तेमाल में लाई जा सकती है, इसलिए उसको इस्तेमाल कर लो, कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, बाद रिवायत में अल्लाह के नबी ने खालों के फ़ायदा उठाने से मना भी फरमाया, बाद रिवायत में ये है, तो उसका जवाब जहन में रहना चाहिए कि एक तो वो कमज़ोर ज़यीफ़ रिवायत है, दूसरा ये है कि उन जिन खालों से मना किया गया वो दिबागत से पहले अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, लेकिन दिबागत दे दी जाए तो वो पाकीज़ा है, उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए फिर जायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين، تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.